जाग जा रे योगी मिटा दे आलस के घेरे अमृत वेले बाबा पुकारे देखो बाहें पसारे बाबा प्यार तुम्हारा अमृत वेले उठाता मोहिनी रात में मुझे जगाता प्रेम की घंटी हृदय मंदिर में बजती परमात्मा पुकार में आत्मा सुनती नींद पर होते योग के विजय माया के होते सहज पर अजय आराम नहीं मिलन चाहते बाबा संग आत्मा खिल जाते अपने कहा रात को अलविदा परवान हुआ क्षमा पे फिदा समय से पहले बाबा जगाते नयन खुलते ही मिलन कराते प्रेम में भीगा मन संकल्प मुस्काते माया के बंधन स्वयं कट जाते ठंडी गर्मी बारिश अब तप के साथी मौसम की मार अब ना डराती सोना अब आराम नहीं माया है नींद अब अमृत नहीं विष का साया है कमाई नहीं ये ऊर्जा की चोरी है सुस्ती के धुन में बजी माया की लुरी है तप की राह में मन की हेरा फेरी है जागृत में विश्व कल्याण का सूत्र हूँ ब्रह्म मुहूर्त का प्रहरी मैं शिव पुत्र हूँ सकल विश्व को तप से भरता अमृत वेला में तपस्वी जलता संकल्प से उठता नवयुग की नींव रखता तप के ईंटों से स्वर्णिम स्वराज्य रचता नींद की घड़ी अब बीत चुकी है माया की छाया अब मिट चुकी है वर्तमान में जलती है आत्मा की मशा मैं हूँ जागृत यही मेरा कमाल बाबा की याद में स्वयं को गढ़ता योग विनी से आलस को राख करता मैं अब सो नहीं रहा मैं हो रहा हूँ मैं अब खो नहीं रहा मैं जाग रहा हूँ जाग जा रे योगी मिटा दे आलस के घेरे अमृत वेले बाबा पुकारे देखो बाहें पसारे
पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ समझ रहे हो क्या कहती है उठ उठ गिर गिर तरल तरंग भर लो अपने दिल में मीठी मीठी मृदुल तरंग पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो कितना ही हो सिर पर भार। नब कहता है वह लो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। प्रकृति शिक्षक है। और उसकी शिक्षाएं मौन शिक्षाएं हैं। चाहे पर्वत हो या सागर या लहरें, पृथ्वी या नभ, सब कुछ सिखाती है। साधना का 79th डे और शरीरीपन का वह पावरफुल स्टेज का अनुभव न होना। अपने को लक्ष्य दो, खुली हवा में बैठो। अमृत वेले याद का इतना अनुभव नहीं होता, इसलिए जैसे साकार में यहाँ बाहर खुली हवा में सैर भी कराते थे, लक्ष्य भी देते थे, योग का अनुभव भी कराते थे, जैसे शुरू में तुम अलग अलग जाकर बैठते थे सागर के किनारे, कोई कहाँ जाकर बैठते थे, ऐसी प्रैक्टिस कराओ। क्या सुना? खुली हवा में बैठो। बंद कमरों में क्या होता है, कई बार नींद आती है, घुटन होती है। खुली हवा में मन खुलता है, बंद कमरों में मन भी बंद हो जाता है। खुली हवा में हम प्रकृति से जुड़ते हैं, उसकी मौन धारा से जुड़ते हैं और मन स्वतः प्रसन्न हो जाता है। तो प्रसन्न होने की एक विधि मनी भाई, खुली हवा। प्रसन्नता अभिनय नहीं है, प्रसन्नता स्वयं की जड़ों से जुड़ना है। हंसी बाजार में नहीं खरीदी जा सकती, खुली हवा में वो सस्ती, टिकाऊ, सुंदर, सहज मिल जाती है। बाहर की जो प्रसन्नता है वो क्षणिक प्रसन्नता है, और बाबा जो प्रसन्नता सिखा रहे हैं वो रूहानी प्रसन्नता है। जब हम किसी की नकल नहीं करते और स्वयं के मौलिक स्वभाव में स्थित रहते, तब हम प्रसन्न हैं। और प्रसन्न न होने के दो कारण बताए हैं मुरली में, कौन से? ईर्ष्या और दूसरा दिल शिकस्त। जब दूसरा आगे बढ़ता है और भीतर जलन होती है, सांप लौटते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं ग्रीन मॉन्स्टर, जेलसी, या फिर दिल शिकस्त होते हैं, अपने प्रयास को छोटा मानते हैं या असफलता को बहुत बड़ा। दिल शिकस्त, उदास, तब अप्रसन्न होते, तब प्रसन्नता खो जाती है। और दादियों के विषय में भी कहा है मुरली में, छोटे कमरों में रहे, पैदल चले, थैले उठाए, बिना त्याग की जड़ों से जुड़े, आनंद का वृक्ष सूख जाता है। प्रसन्नता उपलब्धि नहीं है, अपने ही स्वभाव से जुड़ना है, स्वतः है स्वयं के ही अस्तित्व की सुगंध प्रसन्नता है। तो बाबा ने कहा सदा प्रसन्न। संसार में सिखाया जाता है जिए कैसे, और बाबा सिखाते हैं प्रसन्न कैसे रहे। हाउ टू लिव। तो मुरली का सार, प्रसन्न रहना है तो स्वयं से जुड़ना, प्रसन्न रहना है तो ईर्ष्या से मुक्त रहना, प्रसन्न रहना है तो दुखी नहीं होना, प्रसन्न रहना है तो त्याग की जड़ों को पकड़ के रखना। और प्रसन्न रहना है तो खुली हवा में बैठो। जैसे साकार में यहां बहुत बाहर खुली हवा में सैर भी कराते थे। खुली हवा में क्या होता है? न्यू आइडियाज। इस श्वास के साथ तीन कार्य करने हैं। सबसे पहला, श्वास को देखना। श्वास आ रहा है और जा रहा है, तटस्थ भाव, साक्षी भाव से, कुछ करना नहीं, केवल देखना है। यह साक्षी की साधना को पुष्ट करेगा। और श्वास को देखते देखते हम अपने विकारों को देखने लगेंगे, क्योंकि श्वास का सीधा संबंध विकारों से है। भीतर हलचल तो श्वास में हलचल, भीतर स्थिरता तो श्वास में स्थिरता। इसीलिए अगर भीतर हलचल है तो श्वास को देखते देखते जाओ तो भीतर की हलचल भी शांत हो जाएगी। श्वास आ रहा है और जा रहा है, कुछ नहीं करना है, केवल देखना। उसे नियंत्रित नहीं करना, केवल देखना। और देखते 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 मन शांत हो जाएगा। ये पहला कार्य। दूसरा कार्य, श्वास को नियंत्रित करना, अर्थात प्राणायाम। अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका, कुंभक, बाह्य प्राणायाम, उज्जयिनी प्राणायाम, सारे प्रकार के प्राणायाम, ये श्वास की साधना है। कुंभक, अपने श्वास को वश में करना। इससे क्या होगा? बहुत अधिक मात्रा में ऑक्सीजन फेफड़ों में जाएगा। भस्त्रिका, बहुत सारी बीमारियां लोगों ने प्राणायाम से ठीक की। तीसरा और कार्य है जो श्वास के साथ करना है, वो कौन सा? श्वास ही भोजन है। प्रदारियन, ब्रेथ इज फूड। हवा में वो सारे तत्व है, हवा से सूक्ष्म। हवा में केवल ऑक्सीजन नहीं है, हवा में प्राण ऊर्जा भी है। ये प्राण ही भोजन है। और धीरे धीरे जो समाज ने हमें सिखाया है, ईटिंग ये आदत है केवल एक, ईटिंग बॉडी से ड्रिंकिंग बॉडी और ड्रिंकिंग बॉडी से चार्जिंग बॉडी। धीरे 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 ये जो कंडीशनिंग है, ये जो प्रोग्रामिंग है, ये जो एक्वायर्ड हैबिट है ईटिंग की, इससे परे जाना। और उसका रिप्लेसमेंट है प्राण, प्राणिक लिविंग, प्राणिक ब्रेथ। श्वास में ही सब कुछ अनुभव करना, कि श्वास से ही मुझे सब कुछ प्राप्त हो रहा है जो इस शरीर को चाहिए। और धीरे 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 धीरे, स्लोली स्लोली, ये जो ईटिंग है, हम ईटिंग मशीन्स नहीं है, ईटिंग एंड एक्सक्रीटिंग मशीन्स। चार्ज करना है, विजुलाइजेशन, किस प्राण ऊर्जा से मेरा पोषण हो रहा है। प्राण ही मेरा भोजन है, शुद्धतम भोजन है, मुझे और किसी की आवश्यकता नहीं है। ऐसी प्रोग्रामिंग, ऐसी कंडीशनिंग, ऐसा एक न्यू माइंडसेट क्रिएट करना है धीरे धीरे। उसके लिए प्रकृति से बहुत गहरे तलों पर जुड़ना होगा। जो लोग ज़्यादा प्रकृति से जुड़ते हैं, उनकी भोजन की रिक्वायरमेंट कम कम होती जाती है, उन्हें फिर बहुत ज़्यादा भोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्योंकि जितना शरीर में हम डालते हैं उतना शरीर विकृत होते जाता है। क्योंकि वास्तव में हमें बाहर से कुछ भी नहीं चाहिए, ना खुशी ना भोजन, सब कुछ भीतर ही है। एक अंग्रेजी में बहुत गहरी किताब है, स्कूल ऑफ गॉड्स, उसमें लेखक की चर्चा है रहस्यमयी व्यक्तियों से। हिमालय पर जाता है, देखता है वहां कोई 300 वर्ष का है, कोई 400 वर्ष का है, और कुछ भी नहीं ले रहे ये लोग, और एकदम जवान है। उसमें बहुत सारे वाक्य है इस तरह के, जो ये दिखाते हैं कि हमारे विकारों का कारण कहीं ना कहीं हम जो अंदर डाल रहे हैं वो है। ये अच्छा या वो अच्छे की बात ही नहीं है। लोग पूछते हैं अमृत वेला कितना बजे उठना है, और दूसरा पूछते हैं कि क्या खाना है। इन दो प्रश्नों का एक उत्तर है, हु आर यू। लोग पूछते हैं अमृत वेले कितने बजे उठना है, अमृत वेले कितने बजे चालू होता है, और पूछते हैं कि आप क्या खाते हो और क्या खाना चाहिए। क्या खाऊ, इसका उत्तर है कि तुम कौन हो, उस पर निर्भर करता है। और कितने बजे उठना है अमृत वेला, इसका उत्तर भी है हु यू आर। वो किताब थी हमारे पास, ढूंढना पड़ेगा, स्कूल ऑफ गॉड्स। उसमें लेखक बहुत सारी बातें बताता है, और बहुत इनडायरेक्टली। अ मैन्स ऑर्गन, ऑल इज ऑर्गन्स आर मेड टू ड्रीम। हमारे शरीर में जो अवयव है उसका काम क्या है, स्वप्न देखना। When the body is free of food, our features become more refined. The mind is clear, ready, quick. जैसे खाते हैं तो एक फॉग उत्पन्न होता है, धुंध सी छा जाती है मन के ऊपर, क्लैरिटी चली जाती है, वाइब्रेशंस नीचे आ जाते हैं। द सेल्स आर ग्रेटफुल एंड दे रीजनरेट। हमारा शरीर अंदर से खुश होता है। द हीलिंग प्रोसेस इज अंडर वे, अ रीबर्थ ऑफ द बींग स्टार्ट्स एंड मैनिफेस्ट इट सेल्फ फर्स्ट इन द बॉडी एंड देन इन द वर्ल्ड ऑफ इवेंट्स, एडेड द ड्रीमर। The secret is that when organs have no food, they start to perform their real and natural function again, the dream. कहा है ये समाज की जो विकृति हुई है उसका एक मुख्य कारण भोजन है। इसलिए धीरे धीरे श्वास पर काम करना है, विजुलाइजेशन, कि मुझे जो कुछ चाहिए वो अपने आप इस श्वास से मिल रहा है। तो श्वास के साथ तीन कार्य बताए। सबसे पहला आनापान सति, उस श्वास को केवल देखना, साक्षी भाव, तटस्थ भाव। दूसरा प्राणायाम, बीच बीच में सुबह सुबह थोड़ी देर, 5 मिनट, 10 मिनट। कई सारी बीमारियां है जैसे माइग्रेन, कई लोगों का माइग्रेन ठीक ही नहीं होता है इतनी सारी दवाइयां लेने के बाद, और कुछ कुछ लोग ऐसे हैं कि उन्होंने अपना माइग्रेन केवल प्राणायाम से ठीक कर दिया है। ये दूसरा कार्य। और तीसरा कार्य एक विजुलाइजेशन, कि मैं आई एम अ प्राणिक बींग, मैं प्राण ऊर्जा से जीवित हूं। प्राणाहार, जलाहार, फलाहार एक ही दिन में, जल जब ले रहे हैं तो जलाहारी, जब कुछ भी नहीं ले रहे, ना खा रहे ना पी रहे, तब प्राणाहारी, और जब फल ले रहे हैं तो फलाहारी। इसके नीचे जो भी है ये तीन है, 1 2 3, इससे नीचे जो भी है वहां से इच्छाएं चालू हो जाती है, तृष्णाएं उठती है, उत्तेजनाएं चालू होती है, तेल, मसाले, नमक, अनाज, कुक्ड, सब कुछ। तो क्या सुना अभी? खुली हवा। तो आज का सबसे पहला कार्य है खुली हवा में जाना, कम से कम आधा घंटा बैठना, प्रकृति से संवाद करो, प्रकृति से बात करो, प्रकृति को देखो, प्रकृति को सुनो। एक फिल्म है मराठी की, माची वर्षा बुधा। उसमें जो फिल्म डायरेक्टर है उसने अपने म्यूजिशियन से कहा कि मुझे नेचुरल वॉइस चाहिए। तो जो म्यूजिशियन था वो कितना घंटा, 1800 किलोमीटर घूमा भारत भर, 1800 किलोमीटर, और 25 GB का डेटा कलेक्ट किया, अपना कैमरा अपना वीडियो लेकर, जंगलों में कभी यहाँ कभी वहाँ अलग अलग जगह पर, और 2 मिनट का वीडियो बनाया। केवल कितना बना? 2.45 मिनट्स का। तो इसको प्ले करेंगे तो सभी आंखें बंद और इस आवाज को सुनोगे सुनेंगे। ये पंछियों की नेचुरल आवाज है। इसको उस व्यक्ति ने कितनी मेहनत से जमा किया, 1800 किलोमीटर, 25 GB का डेटा, क्योंकि वो फिल्म डायरेक्टर ने कहा कि मुझे नेचुरल बर्ड्स की वॉइस चाहिए, एब्सोल्युटली नेचुरल, आर्टिफिशियल नहीं, बनाई हुई नहीं। तो ये 2.45 मिनट्स का वीडियो है। सभी आंखें बंद करेंगे और इन पक्षियों की या फिर प्रकृति की आवाज़ के साथ एक हो जाएंगे। एक भी आवाज़ छूटने ना पाए, इतना तल्लीन हो जाना है। स्टार्ट। जरूरी नहीं है कि हर बार अपने को आत्मा ही समझा जाए, और जरूरी नहीं है कि हर बार सूक्ष्म वतन और परम धाम में ही जाया जाए। प्रकृति में जाकर बैठो, और प्रकृति की केवल आवाजों को सुनते सुनते धीरे धीरे अशरीरी अवस्था आ जाएगी, क्योंकि प्रकृति देहभान से परे है, प्रकृति निर्विकार है और मौन है। पश्चिम जगत का एक कवि है पर्सिविसी शेली, उसने एक बार एक पक्षी की आवाज क्या सुन ली, एक महाकाव्य लिख दिया। हम लोग कितनी आवाजें सुनते हैं पर फिर भी कोई महाकाव्य नहीं लिख पाते, उसने कैसे सुना होगा शैली ने। एक ही पक्षी की आवाज सुनी केवल, कोई मैना स्काईलार्क उड़ रही थी, और वो कहाँ थी वो भी नहीं देखा, केवल आवाज सुनी। हेल टू दी ब्लाइट स्पिरिट बर्ड थाउ नेवर वर्ट दैट फ्रॉम हेवन और नियर इट पोर इज थाई फुल हार्ट इन प्रोफ्यूज स्ट्रेन्स ऑफ अनप्रीमेडिटेड आर्ट। वो कहता है पक्षी तुम कौन हो, पक्षी हो या कोई आत्मा, मुझे नहीं पता तुम कहाँ से हो कहाँ हो, परंतु मैं देख रहा हूं दैट फ्रॉम हेवन और नियर इट, शायद स्वर्ग के नजदीक ही होंगी, जहां से प्रोफ्यूज ट्रेन्स ऐसी अविरल धारा बह रही है, अनप्रीमेडिटेटेड आर्ट जिसकी कोई रिहर्सल नहीं है, तुमने तैयारी नहीं की है। हम लोग भाषण तैयार करते फिर यहां आके बोलते, पर तुम्हारा भाषण जो है अनप्रीमेडिटेटेड आर्ट। व्हाट दाउ आर्ट वी नो नॉट, तुम कौन हो हमको पता नहीं। व्हाट इज मोस्ट लाइक दी, पर तुम्हारे जैसा क्या है। फ्रॉम द रेनबो क्लाउड्स देयर फ्लो नॉट, शायद रेनबो से भी क्लाउड के पीछे जो इंद्रधनुष है उससे भी ऐसी मेलेडी कभी नहीं फ्लो हुई है। टीच मी हाफ द ग्लैडनेस, आधा तो मुझे सिखाओ कम से कम, दैट थाई ब्रेन मस्ट नो सच हार्मोनियस मैडनेस फ्रॉम माई लिप्स वुड फ्लो। द वर्ल्ड शुड लिसन देन एज आई एम लिसनिंग नाउ, बेटर देन ऑल द ट्रेजर्स, जितनी किताबों में सुख नहीं है वो तुम्हारी आवाज में सुख है। बेटर देन ऑल द प्लेजर्स ऑफ डिलाइटफुल साउंड दाउ स्किल टू पोएट वेयर दाउ कॉर्नर ऑफ द ग्राउंड। तुम ग्राउंड से परे रहते हो, तुमको ग्राउंड बिल्कुल पसंद नहीं मिट्टी, क्योंकि तुमको उड़ना पसंद है। कोरस हाइमिनियल और ट्रिम्फल चार्ट, ये शादी के जो ढोल नगाड़े होते हैं वो तो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है, और वो जो विजय यात्रा के ढोल नगाड़े होते हैं, कोरस हाइमिनियल और ट्रिम्फल चांट मैच विद थाइन वुड बी ऑल बट एन एम्प्टी वांट, अ थिंग वेयर इन वी फील देयर इज सम हिडन वांट। ऐसा लगता है उसमें कुछ है, कुछ कमी है, पर तुम तो आकाश, इस दुनिया की तुम हो ही नहीं, तुम कहीं और हो। मैं तुम्हारे जैसा कब बनूंगा। वॉट ऑब्जेक्ट्स आर द फाउंटेन ऑफ द हैप्पी स्ट्रेन, वॉट स्ट्रीम और वेव और माउंटेन, वॉट लव ऑफ थाइन ओन काइंड, वॉट इग्नोरेंस ऑफ पेन। हम कब सीखेंगे तुम्हारे जैसा। वी लुक बिफोर एंड आफ्टर, हम तो आगे देखते पीछे देखते, एंड पाइन फॉर व्हाट इज नॉट, और जो है नहीं वो चाहिए। ईर्ष्या, जो है नहीं वही चाहिए, जो दूसरे के पास है वही चाहिए, उसकी शॉल अच्छी है, उसकी पर्स अच्छी है, उसका कमरा अच्छा है, वही हमको चाहिए। वी लुक बिफोर एंड आफ्टर एंड पाइन फॉर व्हाट इज नॉट, अवर सिंसियरेस्ट लाफ्टर विद सम पेन इज फ्रॉट। हम जो खुशी भी दिखाते हैं उसमें भी दर्द ही छिपा हुआ है अंदर। अवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट। सब दर्द में जीते हैं पक्षी, तू मुझे कब सिखा, अपने जैसा गाना सिखा। ये महाकाव्य है, महाकाव्य एक ही कविता है, सारे इंग्लिश लिटरेचर में भारी एक कविता इधर और संसार की सारी कविता एक तरफ। तो आज का सबसे पहला कार्य क्या है, प्रकृति की गोद में जाके बैठो, अलग अलग जगह पे जाओ, रोज नई नई जगह पे जाना है, एक ही जगह नहीं, अगर नक्की भी है तो नक्की के अलग अलग स्पॉट्स और अलग अलग समय पर। नक्की सुबह की नक्की अलग है, दोपहर की, शाम की, रात की अलग अलग है, उसके अलग अलग रूप है, अलग अलग तरीके से देखो। एक डायरी लेके जाओ, उस पर नोट करो कुछ विचार, या तो मोबाइल पर। तो यह सबसे पहला कार्य है आज का। दूसरा कार्य, सूक्ष्म पापों को पहचानो, उसको खत्म करो। आजकल मेजॉरिटी महारथी कहलाने वाले भी अमृत वेले की रूरियान में कंप्लेन करते हुए प्रश्न पूछते हैं कि पावरफुल स्टेज जो होनी चाहिए वह क्यों नहीं होती है, थोड़ा समय वह स्टेज क्यों रहती है। इसका कारण यह सूक्ष्म भाव है जो बाप समान बनने नहीं देता, जैसे पांच विकारों के वश किए हुए कर्म विकर्म या पाप कहे जाते, यह है पापों का मोटा रूप। ऐसे ही महीन पुरुषार्थी अर्थात महारथी के सामने पांच तत्व अपनी भिन्न 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 रूप के आकर्षित कर महीन पाप बनाने के निमित्त बने। पांच विकार को समझना और उसको जानना जितना सहज है, लेकिन पांच तत्वों को आकर्षण से परे रहना यह महारथियों के लिए विशेष पुरुषार्थ है। तो एक है पांच तत्व, एक पांच विकार और दूसरा है पांच तत्व। पांच तत्व अर्थात पहला तो यह शरीर ही है पांच तत्वों का, इसी का तो सबसे बड़ा आकर्षण। थोड़ी सी असुविधा होती है तो तुरंत भागते हैं कि क्या हो गया मुझे। जब इन दस को जानकर इन्हों पर विजय प्राप्त करेंगे तभी सच्चा दशहरा होगा। विजय दशमी स्थिति का ही यादगार है। शरीर से परे जाना, इसके लिए दो तीन कार्य करने हैं। सबसे पहला कार्य, इस शरीर को वास्तविक स्वरूप से देखना, ये है क्या, उसके मूल रूप को, वो नहीं जो दिख रहा है। मूल रूप क्या है, इसमें क्या है, यह हड्डी मांस। बुद्ध ने अपने साहित्य में 32 प्रकार की अपवित्रताएं दी बताई है शरीर की, ये बाल, ये नाखून, सब चमड़ी, एक एक को अपवित्रता में गिनाया है। हर चीज, हड्डी, मज्जा, टेंडन, मसल्स, अंदर क्या है, एक तो उसको देखना। दूसरा, इस शरीर पर उठ रही संवेदनाओं को साक्षी होकर देखना, अधिष्ठान, तटस्थ भाव से केवल देखना क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। यह दूसरा कार्य जो शरीर के साथ करना है। तीसरा, शरीर की अनित्यता को देखना, जलती हुई चिताओं को देखना। देखो आग कैसे जला रही है, ये तीसरा कार्य शरीर के साथ। और चौथा, इस शरीर में रहते हुए ही अशरीरीपन का अनुभव, कि मैं इस शरीर में हूं पर शरीर में नहीं हूं। पांचवा, शरीर साधन है श्रेष्ठ साधना के लिए, तप के लिए। शरीर केवल दो ही चीज के लिए है, सेवा और तपस्या, बस। इसके अतिरिक्त तो उसे किसी और चीज में लगाएंगे तो भोग वृत्ति की उसको आदत पड़ेगी। किसी की भी आदत पड़ सकती है, व्यक्ति कुछ भी शरीर को आदत डाल सकता है। कुछ कुछ लोग कांच खाते हैं, कुछ भी उसको, कुछ भी आदत पड़ सकती है। ऐसा है ये शरीर, उसको रोज 10 बार भोजन कराने की आदत डालो तो वही उसको चाहिए। उसको कुछ खिलाने की आदत डालो तो उसको वो भी आदत पड़ सकती है, क्योंकि वो हैबिट है, बस उसको रिवर्स किया जा सकता है। तो अब क्या कहा, महारथियों का पुरुषार्थ पांच तत्वों के आकर्षण से भी परे, इस पर गहरा काम करना है। शरीर को जलता हुआ देखो, शरीर की अशुद्धियों को देखो, शरीर में रहते अशरीरीपन का अभ्यास करो, और ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर संवेदनाओं को देखो। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ का टुकड़ा टुकड़ा, एक एक इंच, एक भी अंग छूटने ना पाए। तीसरा, अपनी अवस्था को चेक करो। अमृत वेला सदा शक्तिशाली है, अमृत वेला शक्तिशाली तो सारा दिन शक्तिशाली रहेगा, अमृत वेला कमजोर है तो सारा दिन कमजोर। तो दिन का फाउंडेशन है अमृत वेला। अमृत वेला नियम प्रमाण तो नहीं उठते हो, यह वरदानों का समय, तो अमृत वेले का महत्व सदा याद रहता है। उस समय नींद तो नहीं करते हो, झटके तो नहीं खाते हो, कभी कभी कोई नींद की अवस्था को भी शांति की अवस्था समझते हैं। उन्होंने पूछते हैं कैसे बैठे थे, तो कहते हैं बहुत शांति में थे। परम धाम के ऊपर कौन सा लोक है, जो परम धाम के भी ऊपर है, निद्रा लोक। तो ऐसी चेकिंग करो, कभी शक्तिशाली स्टेज के बीच माया तो नहीं आती, जो शक्तिशाली है उसके आगे माया कमजोर हो जाती है। तो चेक करो, क्या मैं अमृत वेले के महत्व को जानता हूं, तो खुशी रहेगी, नहीं तो प्रसन्न नहीं रहेंगे। तो प्रसन्न होने की विधि क्या है मनी भाई, अमृत वेला शक्तिशाली स्थिति। नहीं तो इस संसार की कोई ना कोई बात क्या करती रहेगी, दुखी। संसार ने बीड़ा उठाया है हमें दुखी करने का, और हमने चैलेंज किया है तुमको जो करना है करो, हम खुश रहेंगे ही रहेंगे। एक व्यक्ति बहुत दुखी होता है, उसका मित्र पूछता है इतना दुखी क्यों हो, वो कहता है कुछ नहीं मेरे पत्नी के साथ झगड़ा हो गया। तो वो कहता है तो उसने कहा है कि 30 दिन तक बात नहीं करेगी। तो वो कहता है फिर तो तुमको खुश होना चाहिए। तो बोलते आज का 30वां दिन है। एक्सटेंड कर सकते हैं, कह रहे अपनी अवस्था को चेक करो। अगर ब्राह्मण जीवन की बनी बनाई दिनचर्या प्रमाण कोई भी कर्म यथार्थ तो निरंतर नहीं करते हैं, तो उसके अंतर के कारण पूजा में भी अंतर पड़ेगा। मानो कोई अमृत वेले उठने की दिनचर्या में विधि पूर्वक नहीं चलते, तो पूजा में भी उसके पुजारी भी उसी विधि से नीचे ऊपर करते, अर्थात पुजारी भी समय पर उठकर पूजा नहीं करेंगे, जब आया तब कर लेंगे, अथवा अमृत वेला जागृत स्थिति में अनुभव नहीं करते, मजबूरी से वह कभी सुस्ती कभी चुस्ती के रूप में बैठते, तो पुजारी भी मजबूरी से या सुस्ती से पूजा करेंगे, विधिपूर्वक पूजा नहीं करेंगे। ऐसे हर दिनचर्या के कर्म का प्रभाव पूजनीय बनने में पड़ता है। विधि पूर्वक न चलना कोई भी दिनचर्या में नीचे ऊपर होगा होना, यह भी डैश के अंश में गिनती होता है। अपवित्रता अर्थात प्यूरिटी की नई डेफिनेशन। अगर इररेगुलर लाइफस्टाइल है, इररेगुलर है, तो यह भी इंप्यूरिटी है। इसमें कौन पास है? इरेगुलर लाइफ स्टाइल, अनपंक्चुअल लाइफ स्टाइल, तो भी ये किस में गिना जाएगा? इम्प्यूरिटी में गिना जाएगा। तो आज हम 3 सूत्र देखेंगे। सबसे पहला ओपन स्काई मेडिटेशन। कई बार तो अमृत वेला ही खुले में करो, जरूरी नहीं कि कमरे में बैठ के करना है, थोड़ा चेंज भी चाहिए। हाँ, कहीं पर भी ओपन में चले जाओ और बैठ जाओ। शांति स्तंभ है, ओपन, वेरी गुड, वहां पर बैठ जाओ। 2 से 5, 2 से 4, 2 से 3.5 या 2 से 3, खुला, तो ओपन स्काई मेडिटेशन। दूसरा सटल सीन जर्नल। ऐसी 3 बातें लिखनी है जो कि इनविजिबल हमारी हैबिट्स है, अदृश्य हमारी आदत है, पर वो हमारे जागरण को कम कर देती है। अदृश्य आदतें जो हमारे जागरण को कम कर दी थी, क्या है? जैसे कि ईर्ष्या की आदत, जैसे कि अमृत वेला के बाद सो जाने की आदत, जैसे कि एक्सरसाइज न करने की आदत, टालने की आदत, ईर्ष्या, जो भी है। तो ऐसी 3 इनविजिबल हैबिट्स जो हमारे जागरण को, अवेयरनेस को कम कर देती है। जैसे सेल्फ पिटी, अपने पर ही दया करना, मैं कितना करूं, इतना तो मैं करता हूं, कोई दूसरा तो इतना करते हुए दिखता ही नहीं, मुझे अपने आप को भी थोड़ा, स्वयं पर सेल्फ पिटी, स्वयं पर तरस, आत्मदया, ये भी सुपियोरिटी, मैं इन सबसे बड़ा हूं, जजमेंट, राइट है रॉन्ग है, ये जज करना। तो ये दूसरा कार्य, ऐसे 3। तीसरा है मॉर्निंग पावर स्केच। ये है पहाड़ जो है वीकनेस, और ये सूर्य है मैं, ये सूर्य मैं हूं, तो इस पहाड़ के ऊपर से सूर्य उग रहा है, तो पहाड़ है कमजोरी, ऐसा एक चित्र बनाना है। और लास्ट है अल्टर विजुअलाइजेशन। अपने मंदिर को कल्पना करो, द्वापर में मेरा जो मंदिर बनेगा उसमें भक्त क्या कर रहे हैं। तो हम जितने बजे उठेंगे, वो भी कभी उठेगा कभी नहीं उठेगा, पुजारी वो भी फटाफट पूजा पूरी कर लेगा। हाँ, वो मंदिर में बैठ के सब कुछ करते हैं, एक तो गपशप भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, फिर गपशप भी करते हैं, फिर खाना भी वहीं खा लेते, सब कुछ करते, गेम्स भी वहीं खेलते, संसार की बातें भी वहीं बैठ के करते, छोटे मोटे मंदिरों में, बड़े में नहीं होगा ये। हाँ, वहां डर रहता। तो अपना मंदिर को की कल्पना करना है, मेरा मंदिर कैसा होगा। तो ये भी एक, ये सब प्रकृति में सारे कार्य अपने आप होते, प्रकृति में जाते ही एकदम माइंड खुलने लगता है, अपने आप चीजें दिखने लगती है कुछ और ढंग से। तो ये है आज के 4 कार्य। आज की कविता किसकी है? अच्छा। महाभारत की लड़ाई किसके बीच है? महाभारत के युद्ध के कितने कारण होंगे? अगर ये पूछा जाए कि महाभारत का युद्ध क्यों हुआ, तो कम से कम कितने कारण बनेंगे? 100 कारण तो निकल सकते। द्रौपदी नहीं, बहुत पीछे जाओ, शांतनु, वहां से चालू हो गए कारण। शांतनु का मोह, सत्यवती, पाराशर, बहुत सारे कारण, भीष्म प्रतिज्ञा वहां से चालू होगा, चित्र विचित्र वीर्य, वो वहां से सारे कारण चालू होते हैं। एक 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 कर्ण एक इंडिपेंडेंट कारण है। वास्तव में महाभारत का युद्ध दो ही व्यक्तियों के बीच है, एक शकुनी और एक कृष्ण, बाकी सब तो ऐसे ही है। ये दो ही मुख्य है, ये युद्ध इन्हीं के बीच है। तो कारण द्रौपदी एक कारण, एक कारण दुर्योधन, एक कारण कर्ण, एक कारण तो धृतराष्ट्र है। तो कितने एक एक व्यक्ति, एक एक का भीम की प्रतिज्ञा, युधिष्ठिर, ओजुआ, अंबा, अंबिका, अंबालिका, श्रीखंडी, इंडिपेंडेंट कारण है। तो ये सब कारण है। एक वो युद्ध जब होता है तो उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। तो आज की हमारी कविता का शीर्षक है शकुनी की साजिशें।
ओम शांति। आज की कविता 71। तो कविता का शीर्षक है शकुनी की साजिशें। तो कवि अपने आप से बात कर रहे हैं। ये जिंदगी बता क्यों उलझी साजिशों में, ये जिंदगी बता क्यों उलझी साजिशों में, बीता बहुत वक्त दुर्योधन से ख्वाहिशों में, बीता बहुत वक्त दुर्योधन से ख्वाहिशों में, कुछ तो खैर कर अपनी काबिलियत पर, कुछ तो खैर कर अपनी काबिलियत पर, काबिलियत अर्थात योग्यता, क्षमताओं पर, विशेषताओं पर, कुछ तो खैर कर अपनी काबिलियत पर, कुछ ख्याल कर खुदा से नसीब कुब्बत पर, कुछ ख्याल कर खुदा से नसीब कुब्बत पर। कुब्बत दो प्रकार के होते हैं। एक यहाँ जो कुब्बत है इसका अर्थ है सामर्थ्य, बल, शक्ति, पावर। दूसरा कुब्बत होता है उल्टा होता है, वो किसी की निंदा करना, वो उसको भी कुब्बत कहते हैं। कुछ तो खैर कर अपनी काबिलियत पर, कुछ ख्याल कर खुदा से नसीब कुब्बत पर। शकुनी जैसे शल कपट के जाल मत बुन, शकुनी जैसे शल कपट के जाल मत बुन, अंदर एक बाहर दूसरा ऐसी चाल ना चल, ऐसी चाल ना चल। ये जिंदगी बता क्यों उलझी साजिशों में, बीता बहुत वक्त दुर्योधन से ख्वाहिशों में। ख्वाहिशें अर्थात इच्छाएं। कर ले गुजारिश उस रहनुमाई खुदा से, कर ले गुजारिश उस रहनुमाई खुदा से, ना कर मुखालफत सो की असलियत से, ना कर मुखालफत सो की असलियत से। रहनुमाई अर्थात जो पथ प्रदर्शक, मार्ग प्रदर्शक है, और मुखालफत अर्थात मुखालफत विरोध।
मन्मना भव शिव बाबा सततम्, निराकार तेजोमय पावनम्, प्रभत काले स्मरणं दिव्यम्, सत्यं शिवं सुंदरं चिंतनम्। मशाले तोड़ दे नींद की जंजीरें, थाम ले तप की मशाले, पाड़ दे आलस की काली चादर, निद्रा से तप काना कर अनादर, सपनों का आवेश पीने से कर इनकार, रूहानी योद्धा कर अब ललका। ना सो ना लेट हो जा तैयार, उठ चल कर तम का करने से दुनिया बदलेगी। तेरे एक संकल्प से क्रांति गूंजेगी। उठ तपस्वी, उठ तपस्वी, टूटे तो विश्व सवरेगा, जगे तो भाग्य निखरेगा। अमृत वेले की है पुकार, ना रुक